ओबेरॉय मेंशन में पार्टी चल रही थी। ये पार्टी आशुतोष सिंह ओबेरॉय ने कैरिन के साथ अपने रिलेशन के अनाउंसमेंट के लिए की थी। आर्या पार्टी में पहुंच चुका था। वो बेमन से अपने दादा विक्रम सिंह के साथ खड़ा था। वहां खड़े हुए उसकी नज़र कैरिन की ड्रेस पर गई, जो अगले ही पल फटने वाली थी। वहीं सामने खड़े मिस्टर आशुतोष सिंह ओबेरॉय ने अनाउंसमेंट के लिए माइक हाथ में लिया और दूसरे हाथ से कैरिन का हाथ पकड़ा। बेबी, आई एम फीलिंग सो अनकम्फर्टेबल दिस ड्रेस, कैरिन आशुतोष को बताने की कोशिश कर रही थी। तभी आशुतोष ने उसकी बात बीच में काटकर कहा, डोंट वरी, आई नो यू आर फीलिंग नर्वस, आई एम विद यू। ये ड्रेस, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये नहीं हो सकता, आर्या खुद में बड़बड़ाया। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आशुतोष अनाउंसमेंट कर रहे थे। तभी आर्या दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने कैरिन को कसकर गले लगा लिया। उसका ये करना काफी अनएक्सपेक्टेड था। कैरिन उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, तभी आर्या ने धीमी आवाज में कहा, डोंट मूव, योर ड्रेस इज अबाउट टू फॉल। आर्या, ये क्या बदतमीजी है? आशुतोष उस पर गुस्से में चिल्लाए। उसकी इस हरकत पर वहां मौजूद फुसफुसाकर बातें करने लगे। पहली नज़र में ये लग रहा था जैसे आर्या और कैरिन के बीच कोई क्लोज रिलेशन हो। आर्या ने कैरिन के गले लगे हुए जैसे तैसे करके अपनी जैकेट निकाली और उसे पहना दी। जैकेट पहनाने के बाद वो कैरिन से अलग होकर बोला, हम अकेले में बात करते हैं। अफकोर्स, हमें बात करने की जरूरत है, आशुतोष ने गुस्से में जवाब दिया। एक ही झटके में वहां चल रही अच्छी खासी पार्टी बर्बाद हो चुकी थी। आशुतोष ने आगे कुछ नहीं कहा और कैरिन को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चले गए। पार्टी बर्बाद होने की वजह से शौर्य और मायरा के साथ साथ क्रिस्टी भी खुश थी। वो आगे आईं और वहां मौजूद लोगों से पार्टी खत्म होने की बात कहकर अपने कमरे में चली गईं। वहां मौजूद लोग एक एक करके जाने लगे। कुछ देर में वहां परिवार के लोगों के अलावा और कोई नहीं बचा था। कैरिन ने आर्या के पास आकर धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच। आर्या ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके जाने के बाद विक्रम सिंह जी और रमनदीप आर्या के पास गए। तुम्हें जाकर आशुतोष से बात कर लेनी चाहिए, रमनदीप ने कहा। मुझे किसी से बात करके सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है दादी, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। उन्होंने नहीं देखा लेकिन आपको तो पता होगा कि उसकी ड्रेस, आर्या बोल रहा था तभी विक्रम सिंह जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कई बार खुद का पक्ष रखने के लिए बात करने की जरूरत होती है। अचानक यहाँ जो भी हुआ उससे कुछ अच्छा भी निकल कर नहीं आया। तुम आशुतोष का गुस्सा जानते हो, जाकर उसे सब कुछ क्लियर करो। लेकिन दादू, आर्या भी गुस्से में था, इन सब में मेरी क्या गलती है? मतलब किसी का भला करो और खुद ही जाकर ये एक्सप्लेन करो कि आपने ऐसा क्यों किया। और क्या पता आपने वो भला दिखावे के लिए किया हो, ड्रेस आपके यहाँ से आया था, आपको कैसे पता कि वो ड्रेस खराब है? कहीं आपने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया? वहां मौजूद शौर्य उसके पास आकर बोला, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब छोटी हरकतें करने के लिए मेरे पास टाइम है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से बात ही क्यों कर रहा हूँ, आर्या गुस्से में शौर्य पर चिल्लाया। शौर्य का साथ देते हुए मायरा ने कहा, इस पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सबको पता है कि आप डैड से नफरत करते हैं। आप मेरी मॉम से नफरत करते थे, शौर्य की मॉम से नफरत करते हो, यहाँ तक कि हम दोनों को भी आप पसंद नहीं करते। अब कैरिन आपकी मॉम की जगह ले रही है तो आप उनसे भी नफरत करने लगे। ये सब आपने डैड और कैरिन से बदला लेने के लिए किया ना? डोंट यू डेयर, आर्या ने शौर्य को अंगुली दिखाकर कहा, मेरी माँ को गलती से भी इन सब में इन्वॉल्व मत करना। आर्या के गुस्से को देखकर शौर्य और मायरा चुप हो गए। वहीं उससे बात करने के लिए नीचे आ रहे आशुतोष ने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने सीढ़ियों से ही चिल्लाकर कहा, तो ये सब करने की वजह जान सकता हूँ मैं? आर्या ने आशुतोष की तरफ देखा और जवाब में कहा, मुझे नहीं पता वो ड्रेस कैसे खराब हुई, मैंने उसे भेजने से पहले दो बार क्रॉस चेक किया था। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा आपकी नई गर्लफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उस ड्रेस को गिरने से बचाने के लिए उसे हक किया था, आर्या ने अपनी तरफ से सफाई दी। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। आशुतोष आर्या को अच्छे से जानते थे, उसकी बात पर उन्हें यकीन था। वो उसके पास आकर बोले, हाँ मान लिया कि तुमने नहीं किया होगा, लेकिन ड्रेस तुम्हारे यहाँ से आया था, जरूर तुमने लापरवाही की होगी तभी ये सब हुआ। आज तुम्हारी वजह से खानदान की इज्जत, आशुतोष ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आर्या हंसकर बोला, इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? आप अपने बेटे से भी कम उम्र की लड़की से शादी करने जा रहे हैं, अगर लोगों का इतना ही ख्याल है तो आप ऐसा कभी नहीं करते। आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि आज कैरिन की ड्रेस पार्टी में गिर जाती तो लोग आपकी इज्जत पर सवाल उठाते, जबकि वही लोग पार्टी में आपके और कैरिन के रिश्ते पर सवाल उठा रहे थे। मेरी माँ के जाने के बाद आपने इस खानदान की इज्जत का तमाशा तो वैसे भी लगा दिया है मिस्टर ओबेरॉय। अपनी बकवास बंद करो, मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, तुम भी अपनी मनमानी करते हो, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं टोका। आर्या की बातों ने आशुतोष को और गुस्सा दिला दिया, वो उस पर जोर से चिल्लाए, आप मेरे मनमानी करने पर मुझे रोक सकते थे लेकिन आपने वो हक कब का खो दिया है मिस्टर ओबेरॉय। आर्या ने उनकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। वो वहां से जाने को हुआ तभी उसकी नजर शौर्य और मायरा पर पड़ी। उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, अब तो तुम दोनों को बहुत खुशी मिल रही होगी कि तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, आप इस तरह हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते, शौर्य ने सक पकाकर कहा। आर्या ने एक झटके में उन दोनों की चोरी को पकड़ लिया। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले मायरा बीच में बोल पड़ी, और क्या प्रूफ है आपके पास कि ये किसने किया है? मैंने ये कब कहा कि ये सिर्फ किसने किया है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तुम दोनों ने मिलकर किया है, रही बात प्रूफ देने की, तो मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हम तीनों में एक दूसरे के लिए प्यार तो है नहीं, फिर अचानक किस खुशी में तुम दोनों साथ खड़े हो, ये साबित करने के लिए काफी होगा ना मायरा सिंह ओबेरॉय, आर्या ने सख्ती से कहा। उसकी बात सुनकर शौर्य और मायरा की नजरें छुप गईं। उसके बाद आर्या ने आशुतोष की तरफ देखकर कहा, शायद अब मुझे कोई सफाई देने की जरूरत ना पड़े कि मैंने कुछ नहीं किया। गलती भले ही किसी की हो, लेकिन ड्रेस तुम्हारे यहाँ से आई थी, यहाँ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आशुतोष अभी भी अपनी बात पर अड़े थे और आर्या को इन सब का जिम्मेदार मान रहे थे। उनकी बात सुनकर आर्या ने मुस्कुराकर कहा, इस घर में अगर कोई चूहा भी मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही होऊंगा। अपनी बात कहकर आर्या वहां से वापस जाने लगा। रुको आर्या, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, आशुतोष ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन आर्या ने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वो जिस तरीके से गया था उससे साफ था कि उसे इन सबसे काफी तकलीफ पहुंची थी। आर्या के जाते कि आशुतोष वहां से अपने कमरे में वापस चले गए। उनके जाते ही मायरा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना कि फर्क पड़ता है। शौर्य और मायरा भी वहां से जाने को हुए, तभी रमनदीप उनके सामने आ गई। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। लगता है अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो गए हो दोनों। पहले मुझे लगता था कि इस घर के माहौल में तुम दोनों ऐसे हो गए हो, लेकिन मैं गलत थी। आर्या भी इसी घर में रहता था, लेकिन उसने आज तक कोई गिरी हुई हरकत कभी नहीं की। रमनदीप गुस्से में उन दोनों पर बिफर पड़ी।
शौर्य और मायरा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उनकी जाने के बाद रमनदीप विक्रम सिंह जी के पास आई। तुम्हारी वजह से आर्या को इतना सफर करना पड़ रहा है विक्रम, वो इस लायक है कि उसे ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे इन झूठे रिश्तों के बंधन से आजाद क्यों नहीं कर देते, रमनदीप ने कहा। आज पहली बार मुझे भी तुम्हारी बात सही लग रही है। अब तक मुझे लगता था कि तीनों बच्चे साथ रहेंगे तो आज नहीं तो कल इनके बीच प्यार पनप जाएगा। मुझे नहीं पता था शौर्य और मायरा के दिल में आर्या के लिए इतनी नफरत है, विक्रम सिंह जी ने जवाब दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, आर्या की शादी करके उसे वापस उसके घर में शिफ्ट कर दो ताकि वो चैन से जी सके, रमनदीप जी ने सुझाव दिया। विक्रम सिंह जी ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मैं उससे इस बारे में बात करता हूँ। विक्रम सिंह जी से बात करने के बाद रमनदीप वहां से जा चुकी थीं। वहीं विक्रम सिंह जी आर्या के लौटने का इंतजार कर रहे थे। आज जो भी हुआ उसकी वजह से वो काफी परेशान थे। घर का माहौल भी काफी तनावग्रस्त था। पार्टी में जो भी हुआ उससे आर्या को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी गाड़ी तेज गति से बढ़ाते हुए कहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों मैं झूठे रिश्तों की आस में रहता हूँ। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई इतना कैसे गिर सकता है? मिस्टर ओबेरॉय अच्छे से जानते थे कि ये मैंने नहीं किया, उसके बावजूद वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे दादू की वजह से उस घर में जाना पड़ता है, जबकि मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरा उन लोगों के बीच दम घुटता है। आर्या गाड़ी चलाते हुए खुद से बातें कर रहा था। वो काफी तेज गति से गाड़ी चला रहा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा ट्रंक आया जिससे उसकी गाड़ी भिड़ते भिड़ते बची। आर्या ने अपनी गाड़ी को साइड में पार्क किया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। काम डाउन आर्या, खुद पर कंट्रोल रखो और इन सबसे दूर रहो, वो खुद को शांत करने की कोशिश में लगा था। तभी उसकी नज़र गाड़ी के अंदर लटके एक शोपीस पर गई जो कि रंग बिरंगे पंखों से बना था। उसे देखने के बाद आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक तुम ही हो जो मुझे शांत कर सकती हो, मेरे गुस्से में, मेरे टूटने पर, मेरे अकेले फील करने पर, इन सब में तुमने मुझे संभाला है और आज इस काबिल बनाया है। तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे इतनी ताकत देता है। तुम मेरी जिंदगी हो। पिछले दो दिनों से तुमसे मिला नहीं हूं, शायद तभी मैं इतना परेशान हूं। अब मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए। उस पंखों वाले शोपीस को देखते ही आर्या का गुस्सा एक पल में छू हो गया और वो जिसके बारे में बात कर रहा था उससे मिलने के लिए चल पड़ा। हेलो डियर रीडर्स, आपको क्या लगता है वो इंसान कौन है जो आर्या को इतना सुकून देता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और कहानी के हर भाग पर कमेंट कीजिए। अब से कहानी का भाग रेगुलर आएगा, तो प्लीज आगे की अपडेट के लिए फॉलो कीजिए और बने रहिए।